सुधीजनों देवियों, भारतवर्ष में हर देश में समाज में धर्म में अलग अलग तरह के समय के हिसाब से विकृतियां आती हैं और उन विकृतियों को ठीक करने के लिए भी अलग अलग महापुरुष अपने अपने समय पर आते हैं। भारत में भी अनेक महापुरुष हुए, अलग अलग तरह से उनका कंट्रीब्यूशन है। स्वामी दयानंद उनमें से एक है। जब पूरे देश में गुलामी के कारण 19वीं शताब्दी में जब हम तक हजारों सालों से गुलाम रहने के आदि हो चुके थे, मुगलों के शक हुन, मुगल मुस्लिम, तजाकिस्तान तजाकी, फिर आखिर में ब्रिटिश, और उसके परिणाम स्वरूप हमारे वहां जितने तरह के जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, गरीबी का अनपढ़पन के कारण धर्म में समाज में जो बदलाव आए थे, ये सिर्फ अपने आप को हमें हीन नहीं बनाता था, अभी तो फिजिकली मेंटली सोशियली भी हम बड़े कमजोर बैकवर्ड थे। और उसी समय जो अलग अलग देश के कोने में बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए, महापुरुष आए, लोगों के अंदर दोबारा वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि एज ए इंडियन एज ए हिंदू तो आप भी बाकी अच्छे महान देशों के महान सभ्यता के कंपैरिजन कम नहीं आए या ज्यादा हैं। ऐसे अलग अलग महापुरुष आए, पर समस्या थी कि ज्यादातर जो महापुरुष आए और उन्होंने कोशिशें की, उन सबको ज्यादातर ये 100% पता था कि जो कुछ हमारे देश में गड़बड़ियां हैं वो हमारे हैं, और इसको सुधारने के लिए अगर कोई उपाय है, कोई रिमेडी है, दैट इज ओनली वेस्टर्न रिमेडी। मतलब पश्चिमी सभ्यता जब तक भारत में ना लाया जाए, पश्चिमी सोच को बढ़ावा ना दिया जाए, तब तक इस देश में जो सामाजिक धार्मिक विकृतियां आई थी, जो डिस्टॉर्शंस हुए थे, उसमें सुधार नहीं आ सकता। वो बंगाल से लेकर महाराष्ट्र, ईस्ट से वेस्ट हो, साउथ से नॉर्थ हो, या तो बहुत ज्यादा अपनी तथाकथित सुपरस्टिशियंस को धर्म के नाम पर जो चलता है, जो गड़बड़ियां, उसको सही साबित करने की कोशिश थी, या उसको पूरी तरह गलत नकार करके वहां पश्चिमी संस्कृति को रखने की जो आदत थी, उसी बीच में स्वामी दयानंद का जो कंट्रीब्यूशन है कि हमारे पास जो कमियां है वो कमियों को हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और वो कमियों को सुधारने के लिए हमें किसी दूसरे कल्चर से कुछ सीखने की जरूरत, सीखना बुरी बात नहीं है, किसी दूसरे कल्चर को थोपने की जरूरत नहीं, उसकी दवाइयां भी हमारे पास है, उसकी इलाज भी हमारे पास है, हम दोनों को हम देशी बीमारी का इलाज देसी ढंग से करें, ये स्वामी जी का खास कंट्रीब्यूशन है। स्वामी जी का जन्म 1824 को, देशी हिसाब से विक्रमी संवत के हिसाब से 1881 को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि, जो इस साल 14 फरवरी को पड़ता है, मतलब कल था, और अंग्रेजी तारीख के हिसाब से उनका जन्म 12 फरवरी को हुआ था, इसी हफ्ते, गुजरात में टंकारा में, जामनगर में टंकारा गांव में, और उनका देहांत 1883 अक्टूबर 30 को दीपावली के दिन अजमेर राजस्थान में हुआ था। और जैसे कि ज्यादातर जितने भी आर्य समाज के लीडर रहे हैं उन सबको मारा गया है, वो स्वामी दयानंद हो, उनके बाद स्वामी श्रद्धानंद हो, उनके बाद लेखराम हो, सबको किसी ना किसी ने हत्या की है, इसी तरह स्वामी जी को भी जहर दे करके मारा गया। क्योंकि जब भी आप फ्लो के खिलाफ चलते हैं तो आपके काफी सारे दुश्मन बनते हैं, और जो फैनेटिसिज्म में भरे हुए होते हैं, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। और आर्य समाज क्योंकि नदी का जो प्रवाह है उसके खिलाफ चलता है, जो जो सोशल टर्म चलते रहते हैं इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन कल्चर, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। वो एक्सेप्ट करता है कि जो सच है, जो हमारे शास्त्रों में था, जो ऋषि मुनियों ने कहा। तो जो लोग फंडामेंटलिस्ट हैं उनको प्रॉब्लम होता है। तो स्वामी जी का देहांत भी जहर के कारण दीपावली के दिन हुआ था। स्वामी जी ने जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट भारत में शुरू किया, जब उसके बैकग्राउंड में समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आज वो सब कुछ ठीक हो गया है, आज तो और बुरी हालत है कि अब तो आप किसी की क्रिटिसाइज भी करना बड़ा मुश्किल बात हो जाती है। कहीं आप सही मायने में डिस्कशन करने बैठे तो भी कहीं फतवा जारी हो जाता है, कहीं सरकलम हो जाता है, कहीं आपके घर में गुंडे घुस जाते हैं। तो अब तो और ज्यादा हम पढ़े लिखे ज्यादा हो गए, पैसे वाले भी 100-150 साल में पूरे दुनिया में हम ज्यादा पढ़े लिखे बने, ज्यादा पैसे वाले बने, ज्यादा इंटेलेक्चुअल बने, ज्यादा बड़े बड़े साइंटिस्ट टेक्निशियंस बने। पर पता नहीं क्यों हमारा जो रिलीजियस जो साइड है वो जरूरत वो बहुत ज्यादा रिजिडिटी से भरा हुआ बना। ऐसा नहीं है कि आप जब किसी दूसरे धर्म वाले ऐसे हैं कि यार हमारे यहां नहीं है, नहीं। अब कोई क्रिटिसाइज सुनने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे फिल्में भी आते हैं जो एक अच्छे संदेश देने के लिए, उसमें भी हम हायतवा मचाते हैं। इतने ही पढ़े लिखे लोगों के अंदर धार्मिक अंधविश्वास बढ़ चुका है। 100 साल पहले जब अनपढ़ लोगों में, अधपढ़ लोगों में अंधविश्वास ज्यादा होना चाहिए, पर जो मॉडर्न सोसाइटी में हम देखते हैं, या तो व्यक्ति पूरी तरह नास्तिक हो जाता है कि ये सारे रिलीजन स्पिरिचुअलिटी सब बकवास है, ये सब पोंगापंथी है, या तो बहुत ज्यादा विदाउट यूजिंग इंटेलेक्ट, या तो हम इंटेलेक्ट को पूरी तरह ताला लगा के बैठ जाते हैं रिलीजन के मामले में, या पूरी तरह इतना ज्यादा खोल देते हैं कि हमें वो भी नहीं दिखता है। तो उस समय की जो स्थिति है वो समझने की जरूरत है। जब पूरे शास्त्रों का कोई मतलब नहीं रह गया था, दुनिया भर में जितने भी रिलीजन है सबसे ज्यादा शास्त्र हमारे हिंदू धर्म में है, और हर सब्जेक्ट के है, फिलॉसफी का अलग है, स्पिरिचुअलिटी के अलग शास्त्र हैं, सोसाइटी से डील करने का अलग शास्त्र है, हर विभाग के अलग अलग शास्त्र हमारे यहाँ, माइथोलॉजी अलग है, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, सब अलग अलग कैटेगरी के शास्त्र, इतिहास, पुराण, जिसको आप महाभारत, रामायण या पुराण कहते हैं, इन सबके बावजूद भी हमने धर्म के नाम पर बहुत सारे मिथ फैलाया, फंसे हम। जैसे छोटे छोटे बच्चों को शादी कराना धर्म के नाम पर, एक से अधिक विवाह करना पत्नी के होते हुए भी, बहुत सारे पत्नियों को रखने की आदत डालना, जन्म के नाम पर लोगों पर टॉर्चर करना, जिसको आप कास्ट सिस्टम कहते हैं, जातिवाद कहते हैं। ऐसा नहीं कि उनको सिर्फ छोटा दिखाना, छोटा दिखाने के साथ साथ उन पर जुल्म करना, जो आज भी भारत के बहुत सारे जगह पर गांव में ऐसी हालत है कि जो जो छोटे जात के पैदाइशी किसी छोटे घर में होते हैं, छोटे जात में व शूद्र वगैरह में, उनको अपने पैसे से जूते पहनने का हक नहीं है। अगर सामने ब्राह्मणों का बस्ती हो, कॉलोनी हो, या राजपूतों का हो, तो उनको जूता निकाल कर, चप्पल निकाल के हाथ से रखकर जाना होगा, क्योंकि बड़े जात वालों को इंसल्ट होता है। समाज सुधरा है पर देश बहुत बड़ा है, तो आज की तारीख में भी हम पूरी तरह सुधर नहीं पाए। इसी तरह अनपढ़ गंवार ब्राह्मणों की सुप्रीमेसी, जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें ब्राह्मणों का ऊंचा स्थान था वो एक नेचुरल सिस्टम था, आज भी है। जो समाज में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो हमेशा समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। इवन पॉलिटिकल जो लीडर्स होते हैं वो भी उनको रेस्पेक्ट करते हैं जो इंटेलेक्चुअली बहुत हायर पोजीशन पर होते हैं। आज भी आप देखें डेमोक्रेसी में भी जो जर्नलिस्ट होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको ज्यादा सम्मान मिलता है। पोस्ट छोटा हो बड़ा हो अलग बात, उनके पास पावर होता है कि नहीं होता है। तो ब्राह्मण का यही अर्थ था, जो अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम, जब आप गीता के 18वें अध्याय में पढ़ते हैं कि उनका क्या गुण कर्म स्वभाव है। पर जब पढ़ना लिखना तो किसी को वो चाय बेचता है तो भी वो शर्मा है और उसको वो अपनी सुप्रीमेसी स्थापित करता है। वो मांस खाता है, वो गाय बेचता है, तब भी वो अपने आप को शर्मा के नाम पर अकड़ता है, वो वर्मा के नाम पर अकड़ता है। और शास्त्रों के प्रति लोगों का पूरी तरह जो इग्नोरेंस है, गाय को पूजा करते हैं पर गाय की हत्या भी हम ही करते हैं। और आज भी आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, दुनिया भर में सबसे ज्यादा जो बीफ का इंपोर्ट होता है वो भारत से होता है। दुनिया का सबसे बड़ा जो बीफ इंपोर्टर देश है वो भारत है। तो आप सोचेंगे वहां के मुस्लिम लोग ये सब करते होंगे। 80% जो गायें बेची जाती हैं, गायें बैलें भैंसें, वो हिंदू ही करते हैं। जो बिजनेस करते हैं वो हिंदू करते हैं। ये जो बुचर खाना होता है, जहां स्लॉटर हाउस होता है, ये गलतफहमी मत रहिए कि सबके मालिक मुसलमान या क्रिश्चियन होते हैं, बहुत तरह के हिंदू भी होते हैं। वही हिंदू जो अगले दिन अगर उसको विश्व हिंदू परिषद के मिलके जंतर जंतर मंतर में दिल्ली के सामने गो हत्या बंद करो का झंडा फहराता है, वो जो हिपोक्रेसी हमारे अंदर बढ़ गई है। और धर्म के नाम पर बलि देने का भी, अभी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, पिछले महीने नेपाल में उनके 5 साल में एक फेस्टिवल होता है और वो फेस्टिवल में करीब 5 से 10 लाख करीब जानवरों को बलि चढ़ाई गई एक ही दिन में। हाईलाइट इसीलिए हुआ कि एक दिन में चढ़े और इतने सारे चढ़े। वैसे आज भी दुर्गा के नाम पर, काली के नाम पर अलग अलग देवी मंदिरों में साउथ से लेकर ईस्ट तक, हिमाचल, उत्तरांचल, बंगाल, उड़ीसा, आसाम, त्रिपुरा, कर्नाटक से में बहुत सारे हिस्सों में बलि प्रथा अभी भी चलती है छुपा करके व सामने। पर वो सामने इसलिए नहीं आता, एक बड़े रूप में जो नेपाल में अभी हुआ और हर 5 साल में होता है, आप वो पिक्चर देखेंगे आपका दिल दहल जाएगा। और वो धर्म के नाम पर हमारे लोगों के द्वारा किया गया है। लाखों लाखों गाय भैंसे, जिस गाय को माता कहते हैं, सब पचापच काट के वहां फेंका गया, ये सब धर्म के नाम पर। अनएजुकेशन, ये कोई सोशल प्रॉब्लम नहीं था भारत में, आज ये एक सोशल प्रॉब्लम है। अगर लोग अनएजुकेटेड हैं, लिटरेसी आज भी हमारे देश में 35-40% इलिटरेसी आज भी है, मतलब 40 करोड़ करीब लोग आज भी इलिटरेट हैं, जिनको अक्षर पढ़ना आता नहीं, अपना सिग्नेचर करना भी नहीं आता है। आजादी के समय कर 60-65 के आसपास इलिटरेसी की संख्या थी। और ये संख्या, ये जो इलिटरेसी की बीमारी आई कहां से, ये भी इसके पीछे भी थोड़ा रिलीजियस बैकग्राउंड है। जब हमने ये रूल बनाया कि शूद्र और स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, और 1000-1500 साल से बड़े फोर्सफुली इसको इंप्लीमेंट किया, उसका रिजल्ट हुआ कि 1000-1000 सालों से समाज का 75-80% वर्ग को फोर्सफुली हमने अनएजुकेटेड इलिटरेट रखा। और क्योंकि सैकड़ों पीढ़ियों से वो रहे, और आज बड़ा मुश्किल है उनको कन्विंस करा पाना, उस रास्ते पे ला पाना, इसके कारण गरीबी भी आई, अनएम्प्लॉयमेंट, सुपरस्टिशियंस बढ़े। तो ये सारे जो सामाजिक बुराइयां हैं इनको देख करके, और उसके ऊपर जो अंग्रेजों का और मुगलों का जो गुलामी होने के कारण हमारे अंदर जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो चुका था, मान लिया हम पढ़े लिखे हो चुके थे पर हमारे माँ बाप दादा परदादा अनपढ़ थे या कम पढ़े लिखे थे, वो जो रिलीजन के नाम पर, सोशियल कस्टम के नाम पर, ट्रेडिशन के नाम पर वो सारे एविल डीड्स चलते आ रहे थे, उसी के बीच में स्वामी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया एंड ही एग्जॉस्टेड द नेशन टू एक्सेप्ट सोशियल रिफॉर्म्स लाइक द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी का एक बड़ा सुंदर कहानी आपको जातक कथा में महात्मा बुद्ध के समय मिलता है। अनटचेबिलिटी के पीछे जो हिपोक्रेसी काम करती है, शारिपुत्त की कहानी आपने सुनी होगी, बहुत फेमस कहानी है। शारिपुत्त छोटे जात का, छोटे शूद्र का, चंडाल घर का बच्चा है और जनरली जो बड़े जात के लोग होते हैं वो उनको छूने से उनको पाप हो जाता है, उनको नहाना पड़ता है, दोबारा नहाना पड़ता है। तो ब्राह्मण महोदय सुबह सुबह उठ के नदी में नहा करके आ रहे थे तो शारिपुत्त उनके सामने आ गया, छोटे जात का लड़का था, तो आकर के प्रणाम करके पैर में गिर गया। तो देखा कि ये छोटे जात का लड़का यहां कहां से आ गया, तो उसने गुस्से में बहुत सारी गालियां दी, डांटा, फटकारा, बोले मुझे फिर दोबारा नहाना पड़ेगा क्योंकि मैं अपवित्र हो गया। तो दोबारा नहाने गया, फिर दोबारा नहाकर आया तो शारिपुत्र बेचारा वही पड़ा हुआ था, वो कुछ बोलना चाहता था, वो फिर गाली देने लगे तो शारिपुत्र धीरे से आवाज में कहा, मेरी मां मर गई है तो मैं क्या करूं, तू मुझे अपवित्र करता रहता है, तुझे बड़ा दंड मिलेगा। तो वो उसने अपने वो फटे पुराने धोती में से एक सोने के सिक्का निकाला, बोले वो मां के पास से ये सोने की सिक्का थी, मेरे मां को पाप से मुक्ति चाहिए और इसके लिए मैं आपको ये दान देना चाहता हूं। तो ब्राह्मण की आंखें बड़े बड़े हो गए, बोले लाओ, ये पहले बताना चाहिए था ना कि दान देने आए हो। सोने के सिक्का दान लेते ही ब्राह्मण का अछूत की बीमारी छुट्टी चली गई, अब वो अछूत नहीं हुआ, सोने का सिक्का में अछूतपन नहीं आया। ये रियलिटी है और आज भी ये रियलिटी आपको भारत के गांव में, शहरों में मिलने को मिलेगा। किस हिपोक्रेसी के साथ अछूत को हम व्यवहार करते हैं। तो इसीलिए एजुकेशन ऑफ होम, तो स्वामी जी का यही सारा फील्ड रहा काम करने का, एजुकेशन ऑफ वोमेन। तो आर्य समाज पहली बार भारत में जो लड़कियों के स्कूल खुले, वो पंजाब में जो आजकल पाकिस्तान के हिस्से में, लाहौर वगैरह में जो आजकल पाकिस्तान में चला गया है, तो जो लड़कियों का पहला स्कूल वो आर्य समाज ने खोला पूरे भारतवर्ष में। अंग्रेजों ने तो जो कोविड एजुकेशन शुरू किया था, जो लड़कियों के लिए पहला जो स्कूल खोलने की व्यवस्था थी। इसी तरह स्वदेशी आंदोलन को, कि जो हमारे देश की चीजें हैं, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे कपड़े, हमारे देश में बने हुए चीजें, उसके लिए प्राइड फील करो, दूसरों के लिए नहीं। इंपोर्टेंस ऑफ काउज, स्वामी जी का जो ग्रंथ है, 15-17 ग्रंथ हैं जिसमें सत्यार्थ प्रकाश एक फेमस है, पर एक किताब आपको उन्होंने लिखा है गो करुणा निधि, उसका मतलब होता है गाय के प्रति दया भाव रखने के लिए। वो सिर्फ इसीलिए कि जो गाय हत्या होती है, और ये कोई नॉन हिंदुओं के बारे में नहीं था, हम लोग जो करते हैं वो क्यों नहीं करना चाहिए और गाय की क्या महत्व है, इसीलिए नहीं कि गाय में 33 करोड़ देवता बसते हैं इसीलिए उसको बचाना है, नहीं, 33 करोड़ वो देवता बसाने वाले ही लोग पहले मारते हैं, पहले बेचते हैं मुसलमानों को, उसका क्या सोशल इंपोर्टेंस है, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस है। पहले बार स्वामी जी ने किताब लिखा 18वीं शताब्दी में कि गाय क्यों हमारे लिए पूजनीय है, गाय का क्यों हमें सम्मान करना चाहिए, और वो नेशनल प्रॉस्पेरिटी के लिए कितना जरूरी था। इसी तरह उन्होंने पहली बार, स्वामी जी ने, वो गुजराती थे जी, नॉन हिंदी स्पीकिंग थे, पर उस समय भी उनके अंदर था इस देश में जो इतनी सारी भाषाएं हैं और जिसके कारण हम एक ही देश के होने के बावजूद भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते और कम्युनिकेशन के लिए हम अंग्रेजी के पीछे पड़े रहते हैं, तो वो गुजराती होने पर भी वो हिंदी में बोलना शुरू किया। उन्होंने सारे ग्रंथ हिंदी में लिखा, शुरू में वो संस्कृत में प्रवचन देते थे और संस्कृत में ग्रंथ लिखते थे, पर जैसे जैसे उन्होंने दुनिया में अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में घूमना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया, देखा संस्कृत भी बहुत ऊंची बात हो जाती है, कॉमन आदमी तक पहुंचने के लिए तो मैं हिंदी में आश्रय लिया। और जबकि उनकी हिंदी अच्छी नहीं है, आज भी आप उनके किताबें पढ़ेंगे हिंदी में आप देखेंगे बहुत सारे शब्द उसमें गुजराती शब्द है जो हिंदी में उसका उल्टा मीनिंग होता है। जैसे हिंदी में बराबर का मतलब होता है इक्वल, पर गुजराती में बराबर का मतलब होता है ठीक बढ़िया। अब उन्होंने वो बराबर लिखा तो वो इसीलिए हिंदी स्पीकिंग लोगों में बड़ा सत्यार्थ प्रकाश में भी अर्थ आना, क्योंकि उनको इतनी हिंदी आती नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने कहा हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। पहली बार उन्होंने वो आंदोलन की शुरुआत की नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। ये एडवोकेटेड द इक्वल राइट्स एंड रेस्पेक्ट टू वुमेन। एक स्वामी होकर के पहली बार कोई रिलीजियस व्यक्ति, कोई धर्माचार्य, मोस्ट ऑफ धर्माचार्य लोग होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, बहुत पोंगापंथी पुराने ख्याल के होते हैं, पर पहली बार कोई विद्वान धर्माचार्य साधु होकर के वो दावा करता है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान होना चाहिए, उनकी शिक्षा में हर क्षेत्र में उनके बराबर का हक होना चाहिए। और तभी उन्होंने एजुकेशन जो गुरुकुल सिस्टम भी शुरू किया, गुरुकुलों में आज भी संस्कृत आपको आश्चर्य होगा हम इतने डेवलप्ड हो चुके हैं, जो यूनिवर्सिटीज चलते हैं जहां संस्कृत डिपार्टमेंट्स होते हैं सरकारी पैसे से, वहां वेद पढ़ने के लिए आज भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में वेद का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें लड़कियों को अलाउ नहीं करते। और प्रॉब्लम है कि उस सोसाइटी में अगर एक कोई कंप्लेंट कर दे तो वो प्रोफेसर जेल जा सकता है, ऐसा कानून है, पर कोई कंप्लेंट भी नहीं करता क्योंकि स्त्रियों को शूद्रों को अधिकार नहीं है आज भी इस स्थिति। और क्योंकि आजकल कानून बहुत सख्त हो चुके तो इनडायरेक्टली और बहुत सारे रूल बना करके किसी ना किसी रूप में उनको डिस्करेज किया जाता है कि वो वेद पढ़ने ना जाएं, क्योंकि वेद भ्रष्ट हो जाएगा अगर स्त्री और शूद्र पढ़ते हैं तो। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं स्वामी जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो किस रूप में आपको देखते हैं। ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइवल ऑफ द इंडियन एजुकेशनल सिस्टम। इंडियन एजुकेशन सिस्टम अब हम 300-400 साल से देखा जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का क्या रिजल्ट है, हम बहुत बढ़िया सक्सेसफुल लोग पैदा कर पाते हैं उससे, जो लाइफ में बहुत सक्सेस हो पाए, बहुत बढ़िया एक नंबर के प्रोफेशनल पैदा करते, जो अपने अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट बन सकते, हम बहुत बढ़िया पैसा कमाने वाले लोग पैदा करते एजुकेशन सिस्टम से। पर जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम बढ़ा तो जो मिसिंग फैक्टर देखने को मिला कि वो बच्चे, वो लोग जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, वो रिलेशनशिप को मेंटेन करना नहीं जानते, वो एथिक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो सोसाइटी को नापसंद करते हैं, उनको लगता है ये सोसाइटी के कारण ही हमारी सारी इच्छाओं को दबानी पड़ती है, तो ये खुला होना चाहिए। और उसके परिणाम स्वरूप जो खोखार मेंटेलिटी वाले एक समाज पैदा हुआ, अब वो सिर्फ ईस्ट नहीं, जिस उसी वेस्ट में ही अब शुरू हुआ है कि एजुकेशन के साथ कुछ मोरल एजुकेशन भी होना चाहिए। एजुकेशन इज नॉट टू जस्ट टू अर्न मनी, एजुकेशन टू डेवलप द पर्सनैलिटी। तो पूरे व्यक्तित्व को विकास करने के लिए जो सिस्टम था, जिसको प्राचीन काल में हम गुरुकुल व्यवस्था कहते थे कि गुरु के गुरुकुल में पढ़ने का, जिसमें सिर्फ आप पैसा कमाने की किताबें नहीं पढ़ते अपितु खुद को जीने के लिए जो भी जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उन सबको सीखना पड़ता है, वो जो होलिस्टिक एजुकेशन है उसको दोबारा रिवाइव करने की क्रेडिट अब स्वामी दयानंद जी को जाता है। वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, उन्होंने उस पर काफी एडवोकेट किया, काफी खुद कोशिश किया, बाद में आर्य समाज ने काफी गुरुकुल मूवमेंट चलाया, पर आज भी वो इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाता है क्योंकि पूरी सोसाइटी एक भेड़ चाल में फंसा हुआ है। पर धीरे धीरे दुनिया भर के अलग अलग जो एजुकेशनलिस्ट हैं वह मानते हैं कि जब तक आप होलिस्टिक एजुकेशन नहीं देंगे, बच्चे को कल्चर का पता होना चाहिए, रिलीजन का पता होना चाहिए, मोरलिटी का पता होना चाहिए, आर्ट का पता होना चाहिए, फिर वो अपने प्रोफेशनल जो भी वोकेशनल नॉलेज है उसका पता होना चाहिए। जब तक ये रिलेशनशिप की भी कैसा मेंटेन, वो जो मोरलिटी है रिलेशनशिप में एक बड़ी जरूरी पार्ट है। और सबसे बड़ी बात है, आप मेंटली इंटेलेक्चुअली आपको शांति कैसे मिले? ऐसा है पर हम बहुत तनाव में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो समाज बनाया गया था, जो सोसाइटी, जो रिलेशनशिप, जो मोरलिटी, ये अंदर से आपको शांति देती है। ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट इसका मिलता है जिसको हम इग्नोर किया। स्वामी जी इसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश की। वॉज ए ग्रेट फिलोसोफर। दुनिया में ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं था जो उन्होंने नहीं पढ़ा, वो क्रिश्चियनिटी का हो, इस्लाम का हो, बौद्ध का हो, जैन का हो, और हिंदुओं का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं था जो उन्होंने नहीं पढ़ा। इसका प्रमाण देखना है तो सत्यार्थ प्रकाश आप पढ़िए, 14 समुल्लास पढ़िए, 10 समुल्लास में तो वो हमारे अपने धर्म के बारे में जो भी अच्छाई बुराई, जो बुराई है उसको क्रिटिसाइज किया, जो अच्छाई है उसको हाईलाइट किया, क्या असली फॉर्म में दिखाया। बाकी 4 चैप्टर में उन्होंने बाकी रिलीजन का भी उतना ही क्रिटिसाइज किया, उनके अंदर जो अच्छाइयां बुराइयां दिखाने की कोशिश की। सत्यार्थ प्रकाश में माना जाता है 3000 कितने किताबों का रेफरेंस सिर्फ मिलता है, इतने पढ़े, इतने किताबों को उन्होंने पढ़ा था। एक माइटी लॉजिशियन थे, एक मैग्निफिसेंट स्पीकर थे, वो इतनी उल्टी बातें करते थे। उल्टी बात का मतलब होता है कि समाज में जो चलता है उसके खिलाफ आप बोलते हो, इसलिए उनके दुश्मन काफी बने। उसके बावजूद भी हजार हजार लोग उनके प्रति मिसमोराइज होते थे बिकॉज ऑफ हिज द स्पीकिंग पावर। ए ग्रेट मैन ऑफ लेटर्स, सोशल रिफॉर्मर, पैट्रियट, फिलंथ्रोपिस्ट एंड एसेज, तो वो तो खैर हर ज्यादातर महापुरुषों में होता है। छोटी सी एक दो इंसिडेंट्स आप उनके बारे में बताएंगे। वंस एड्रेसिंग ए ह्यूज गैदरिंग, दयानंद थंडर्ड, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आज भी हम अमेरिका में भी जो लोग रहते हैं उनके लिए भी ये इंस्पायरिंग है। योर एंसेस्टर्स वर नॉट अनसिविलाइज्ड मेन लिविंग इन फॉरेस्ट्स, दे आर ग्रेट मेन हु एनलाइटन दिस वर्ल्ड। योर हिस्ट्री इज नॉट ए बंडल ऑफ डिफीट्स, जो हमें हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, हमें हिस्ट्री में हर इंडियन बच्चे को जो भारत में पढ़ता है या यहां भी पढ़ता है, हिस्ट्री में यही पढ़ाया जाता है, तुम्हें मुगलों ने कैसे हराया, ब्रिटिश ने कैसे हराया, तुम्हारे क्या क्या गड़बड़ियां थी, तुम्हारे एंसेस्टर्स कैसे गाय खाते थे, वो गड़बड़ काम करते थे, सारी बुराइयां मानो जैसे हमारे में भरा हुआ था। तो स्वामी जी इसको इंडिकेट, योर हिस्ट्री इज नॉट ए बंडल ऑफ डिफीट्स, क्योंकि हमें वो कभी नहीं पढ़ाया जाता जो चंद्रगुप्त ने क्या किया। हम अकबर के बारे में 40 पेज पढ़ते हैं, पर चंद्रगुप्त के बारे में, विक्रमादित्य के बारे में, अशोक के बारे में एक पेज में चारों हिस्ट्री आ जाती है, चारों का आ जाता है। जो हमारा जो जिसको प्राउड फील करने के लिए जो हिस्ट्री है उसको कभी नहीं पढ़ाया गया, सिर्फ हिंस देकर छोड़ दिया जाता था, जिसमें पूरी इंडियन कम्युनिटी अपने आप को कॉम्प्लेक्स में डाले, इसी तरह के हिस्ट्री हमें ज्यादा पढ़ाया जाता था। हमें यह पढ़ाया आज भी जाता है कि तुम विदेशी हो, आक्रमक हो, तुम बाहर से आए हो, इन्वेडर्स हो, जैसे हम इन्वेडर थे, ब्रिटिश थे या मुगल थे, ये जो यहां के ओरिजिनल इंडियन है वो भी तो इन्वेडर थे, जिसको आप आर्यन, जो आर्य सिद्धांत के नाम पर आप पढ़ते हो। अब उसका रिजल्ट है मॉडर्न इंडिया में आज भी तमिलनाडु के साथ, तमिल लोगों के साथ भारत का जो 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 लड़ाइयां चली, कितने सालों तक द्राविड़ मूवमेंट चला और आज भी चलता रहता है और अलग अलग देशों में चलता है। योर वैदिक स्क्रिप्चर्स आर नॉट द सॉन्ग्स ऑफ कावर्ड्स, जैसे कि ब्रिटिश और फ्रेंच जर्मन हिस्टोरियंस ने लिखा कि ये वेद जो उनके जो वेद उपनिषद वगैरह है ये कुछ समझ में नहीं आने वाला, ये कुछ आता भी नहीं है, उठपटंग बातें हैं, ये गडरियों के गाना जैसा है। गडरियों का कंसेप्ट इसीलिए दिया, भारत में गडरिय लोग बहुत कम होते हैं, वहां तो गाय चराने वाले होते हैं, गोपाल। ये गडरियों का कंसेप्ट सेंट्रल एशिया का कंसेप्ट है, क्योंकि जो ओवरऑल क्रिश्चियनिटी का जो जो आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में ज्यादातर गडरिय होते हैं। तो वो अपने आप को उसके कंपैरिजन करने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए हर वो वेस्टर्न एक्सपर्ट जो हिंदू शास्त्रों का एक्सपर्ट है उसने कहीं ना कहीं ये लिखने की कोशिश किया कि ये गडरियों का गाना है। तो स्वामी जी उसका रिएक्ट करते हैं, ये वैदिक स्क्रिप्चर्स आर नॉट द सॉन्ग्स ऑफ काउ हर्ड्स, दे आर इमोर्टल ट्रूथ विच शेप्ड माइटी सोल्स लाइक श्री राम एंड श्री कृष्ण। अगर तुम्हें समझना है कि तुम्हारे शास्त्र में क्या लिखा है तो कृष्ण को चरित्र को पढ़ो, राम के चरित्र को पढ़ो। पर सज्जनों माताओं, वो कृष्ण का चरित्र वो नहीं जो आजकल हम सुनते रहते हैं। अगर कृष्ण का चरित्र पढ़ना है तो महाभारत पढ़ो, व्यास के महाभारत पढ़ो, देखो कितना माइटी था, कितना योगी था, कितना जितेंद्रिय था, कितना महान था। वो नहीं जो आजकल कृष्ण के भक्त के नाम पर राधा कृष्ण प्रेम लीला, गोपियों के कपड़े उतारने वाला, मक्खन चुराने वाले के पूरे जिंदगी बिता देते यही तारीफ करके। ये भी एक कम्युनिटी है जो अपने महापुरुषों को गालियां दे दे करके कहता है ये भक्ति का सिद्धांत है। ये भी एक विचित्र कम्युनिटी है जी, ये हिंदू कम्युनिटी। ये पहली कम्युनिटी दुनिया में जो महापुरुषों को की बुराई कर करके कहता है ये भक्ति है, भक्ति है। तो अगर तुम्हें सीखना है कि हमारे शास्त्रों ने क्या दिया तो श्री राम के चरित्र को पढ़ो, पर तुलसी राम तुलसीदास के नहीं वाल्मीकि रामायण को पढ़ो। सीखोगे कि असली बात राम कितने महान थे, क्यों वो भगवान के पद पर लोगों के द्वारा पूजे जाते हैं या कृष्ण पूजे जाते हैं। अगर समझना है तो चरित्र को, मूल शास्त्रों को पढ़ो, न कि ये अधकचरे गया है भक्ति योगियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, ये 500 साल पहले देशी भाषाओं में लिखे गए लोगों के द्वारा कविताओं को आप शास्त्र मान करके बैठे हो। अगर सचमुच समझना है शास्त्रों को पढ़ो और उन महापुरुषों की जीवनी को पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा तुम्हारी संस्कृति कितनी महान थी। आगे कहते अवेक अराइज बी प्राउड ऑफ योर ग्लोरियस हिस्ट्री। वो ग्लोरियस हिस्ट्री जिसने दुनिया को जीरो दिया। अभी कुछ दिन पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक एडिटोरियल था, एक दो साल पहले एडिटोरियल इस कंटेक्स्ट में था कि जैसे पूरे वेस्ट में, अमेरिका में बहुत सारे मिस्चीवियस लोग, इवन इंडियन लोग भी जो इंडियन अमेरिकन या इंडियन यूरोपियन होते हैं, वो पेटेंट कर डालते हैं योगा आसनों को, हल्दी की जो आयुर्वेदिक मेडिसिन की पेटेंट करके कर देते हैं। अब क्या है कि प्रॉब्लम, भारत में ऋषि मुनियों ने कभी भी अपने चीजों को अपने नाम तक भी नहीं लिखा जो किताबें लिखा। अब हमारे वहां पेटेंट सिस्टम था नहीं तो वो करते हैं, तो उनके लिए खूब लड़ना पड़ता है, खूब संघर्ष करना पड़ता है उस कि भाई ये हल्दी आपकी नहीं, ये हमारे 2000-4000 साल पहले से हमारे यहाँ खुजा हुआ है। हमारे यहाँ हर वो घर के पुराने औरतें जानते हैं कि उसकी क्या एंटीबायोटिक यूज होता है, तुलसी का, करेला का, वगैरह वगैरह। तो इस कंटेक्स्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया में वो एडिटोरियल था कि सारी दुनिया को भारत के हर चीज का पेटेंट कर लेने दो, भारत सिर्फ एक चीज का पेटेंट कर ले, वो जीरो का पेटेंट कर ले, तो हर रोज वो अरबों अरबों डॉलर कमाने लगेगा कि जो भी जीरो को यूज करेगा इतना परसेंटेज वह हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि जीरो भी हमने दुनिया को दी है। हमने दुनिया को अलजेब्रा दी है, अरिथमेटिक दी है, हमने दुनिया को ज्योमेट्री दी है, ट्रिकोनोमेट्री दी है, मैथमेटिक्स के सारे जो सोर्सेस है वो भारत ने दिया है। वो अलग बात है कि भारतीय कभी उसको पढ़े नहीं, कभी सुना नहीं, जाना नहीं, और वेस्टर्न लोगों ने उसको पढ़ा सुना अपने नाम पर, जैसे हर चीज को पेटेंट करते हैं। तो आज भी अलजेब्रा, आज आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं, ज्योमेट्री के फॉर्मूला, पैथागोरस फॉर्मूला के नाम पर कोई शून्य सूत्र को नहीं जानता, कोई बोधायन को नहीं जानता, क्योंकि हम ही लोग कभी उसको, कभी हमने उसको भाव नहीं दिया। तो कहते हैं आप उस प्राउड फील करो अपने उस ग्लोरियस हिस्ट्री पर, और उसको प्राउड फील करने के लिए पढ़ना पड़ता है ना। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट टू मोल्ड द प्रेजेंट, शेम अपन दैट एजुकेशन विच फील्स यू विथ कंटेंट फॉर योर एंसेस्टर्स। ऐसा एजुकेशन जो हमें यह बताता है कि हमारे पूर्वज कितने जंगली थे जिनको कुछ नहीं आता था, ऐसा नहीं है। ऐसा हमें पढ़ाया गया 1500 साल से, ऐसा हमारे अंदर डाला गया ये सच नहीं है। हमारे एंसेस्टर्स इतने महान थे, जब पूरे देश दुनिया भर में, खास करके यूरोप में बा वेस्टर्न कंट्रीज में, जहां लोगों ने कपड़े पहनने तक सीखा नहीं था, जिस समय मतलब नंगा घूमते थे, शिकार करते थे, शिकार करके गुजारा करते थे, खाना पकाना भी नहीं जानते थे, उस समय हमारे यहां यूनिवर्सिटी चला करते थे। नालंदा तक्षशिला का वो नालंदा तक्षशिला इंडियन हिस्ट्री में कोई एंशियंट हिस्ट्री नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो तो 50-60 बीसी है, और नालंदा तक तो बौद्ध धर्म भी आ चुका था। उससे पहले और उससे पहले भी हमारा और बड़ा ग्लोरियस हिस्ट्री था, पर इवन नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला जब हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी चलाते थे, एक एक यूनिवर्सिटी में 10-10 हजार से ज्यादा लोग पढ़ने आते थे, पढ़ते थे अलग अलग देशों से आकर के, उस समय ये जो जो सिविलाइज्ड वेस्टर्न कंट्री थे वहां सिविलाइजेशन का शुरुआत भी नहीं हुआ था। तो इसलिए ये फील, ये समझो जानो कि तुम कितने ऊंचे हिस्ट्री के संतान हो। वो अलग बात है कि तुमने तुम अपने कारण से बा गुलाम करने वालों के कारण से तुम उसको भूल चुके हो। इंस्पायर द नेशन टू एस्पायर स्वराज्य, जो स्वराज्य का कंसेप्ट है ब्रिटिश गवर्नमेंट में, जिसको लोकमान्य तिलक ने बहुत हाईलाइट किया बाद में कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, सेल्फ रूल इज अवर बर्थ राइट। ये स्वामी जी ने पहली बार इस बात को रखा कि हर इंसान का संसार में जो है उसको स्वराज्य का अधिकार है, उसको सेल्फ रूल का अधिकार है। तो पहली बार स्वराज्य, नेशनलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म को उन्होंने जोड़ा। कि ऋग्वेद के एक पूरा का पूरा चैप्टर है जो स्वराज्य की प्रशंसा करता है। स्वराज्य मतलब मेरा मेरा देश मेरे द्वारा शासित हो, हमारे द्वारा शासित हो। He was the first to give the call of Swarajya in 1876, later taken up by Lokmanya Tilak. He was the first to give the word of Swadeshi. और ऐसा नहीं कि स्वामी जी सिर्फ religious या spiritual leader थे, उनकी जो patriotism थी, जो राष्ट्रभक्ति के बारे में भी वो बहुत लोगों को प्रेरित करते थे, और उसका परिणाम था कि आजादी की लड़ाई के गांधी से पहले, जो गांधी जमाने से पहले जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर इन्फ्लुएंस्ड बाय आर्य समाज और स्वामी दयानंद। उनमें महात्मा हंसराज, लाला लाजपत राय, श्याम जी कृष्ण वर्मा जो जो जो, जो लंदन में जिन्होंने इंडिया हाउस बनाया, मैडम क्यामा, पंडित गुरुदत्त, सुखदेव, विनायक दामोदर सावरकर जी, लाला हरदयाल, ये इसमें से तो बहुत सारे शहीद भी हुए, मदनलाल ढिंगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी श्रद्धानंद एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे जो प्री गांधी आजादी के मोमेंट में जुड़े हुए लोग थे, वो आर्य समाज से प्रेरित थे, आर्य समाज से जुड़े हुए थे, डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, यह आर्य समाज के संपर्क के आने के बाद उनके अंदर यह भाव जगने लगा। तो समय हो चुका है। तो इस तरह एक एक महान व्यक्तित्व, और एक खास छोटी सी बात कह के मैं इस बात को यहां विराम दूंगा जो उनके लाइफ को आप डिस्क्राइब करता है। उन्होंने अपने जीवन के जीवन में इवन जो मोक्ष है उन्होंने कभी कहा नहीं। शास्त्रों में तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सबकी जो शास्त्रीय बात ने रखा, पर उन्होंने अपने जीवन में कभी मोक्ष को हाईलाइट नहीं किया। और वो हमेशा मानते थे क्योंकि मोक्ष सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीडम की फ्रीडम है और मुझे ऐसा नहीं चाहिए। वो एक साधु सन्यासी होने पर भी वो चाहते थे जब तक मेरे देश के ज्यादातर लोग सभी लोग उस स्थिति पर ना पहुंच जाए, मुझे ऐसी मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। तो उससे हम समझ सकते हैं एक व्यक्ति और सामाजिक आर्थिक राष्ट्रीय सेवा करते हुए भी, जिसको, और बड़े इंटरेस्टिंग चीज है, जिंदगी भर उनको इतने सारे उनके खिलाफ उनको 18 बार जहर देने की कोशिश की गई, दर्जनों बार उनको अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश की गई, उसके बावजूद भी आखिर में वो जहर के द्वारा मारे गए, वो कभी बाद में उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस तरह एक महान व्यक्तित्व जो सत्य के सिवा और कुछ बात करने की कोशिश नहीं करता, लोग उसको पसंद करे या ना करे, वो उन्होंने किसी की छोड़ा नहीं है, किसी भी धर्म के महान से महान, छोटे से छोटे, जहां क्रिटिसाइज करना है किया, जो प्रशंसा करना है किया, जो बुरा है उसको खुल के बोला, जो बुरा नहीं है, जो अच्छा है उसकी खुल की तारीफ की। और ऐसे एक महान व्यक्तित्व बहुत विरले होते हैं, ज्यादातर लोग तो साधु संन्यासी बनने के, महामंडलेश्वर बनने के चक्कर में, शिष्य चेलापाटी धन कमाने के चक्कर में कंप्रोमाइज करते हैं, सच बोलने की हिम्मत नहीं करते। ऐसे जमाने में ऐसे एक व्यक्तित्व जो अपने आप को सैक्रिफाइस दे करके सही चीजों को सामने रखने की कोशिश करता है, धार्मिक आध्यात्मिक और राष्ट्रीय रूप में, ऐसे एक व्यक्तित्व में से एक स्वामी दयानंद जी थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। उनको आज के उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर हम सब नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दुनिया भर में, हमारे देश में, हमारे धर्म में ऐसे सैकड़ों हजारों दयानंद पैदा हो जो सच की साथ दे और किसी भी तरह के मीठा झूठ को प्रमोट करने के खिलाफ रहें। इसी के साथ विराम लेता हूं। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।